ओम शांति। क्या कहूं कि फिर कैसे आना हुआ। ऐसे नहीं है कि साधना बहन लाई तो इसलिए आ गया। आप सबका जो प्रेम है वो ले आया। दुनिया में कई बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि दाना पानी ले जाता है, कोई कहता है भावी ले जाती है, जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है कि ड्रामा में होता है तो व्यक्ति जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ इसलिए आया कि आई लव यू, आपको मालूम है आई लव यू का तो वायरस सारे कंप्यूटर गड़बड़ हो गया। एक जमाना था हम कहा करते थे आई लव यू, अब वो भी कहना मुश्किल हो गया। तो क्या कहें अब, इसको तो नहीं कंप्यूटर में कुछ कर सकते। ये पिक्चरस लैंग्वेज है जिसमें हम ये कहें कि बाबा ने हमें एक दूसरे से कितना स्नेह से नजदीक आने का सिखा दिया। शुरू में भी जब हम बैठे थे आज इस क्लास के, जैसे कि हमेशा बैठते हैं, तो दृष्टि से मिलन होता है बाबा की याद में। पहले भी हमने देखा कई दफा जब बाबा साकार में थे, दिल्ली में आते थे, तो जब दिल्ली से वापस माउंट आबू जाते थे या वहां से जब कभी दिल्ली आते थे, तो गाड़ी में जो उनका कंपार्टमेंट था, बोगी थी, उसके दरवाजे पर वो खड़ा होकर और जो पकड़ने की जगह होती है उसको पकड़कर जब खड़े होते थे, और प्लेटफॉर्म पर भाई बहन भी खड़े होते थे, काफी लोग होते थे, तो बाबा उनको देखते थे साइलेंस में और सभी बाबा से दृष्टि लेते थे। दिल्ली में तो प्लेटफॉर्म पर भीड़ होती है, आप सब जानते हैं, तो इतने लोग देखकर हैरान होते थे कि ये बोल तो कुछ रहे नहीं, चुप करके खड़े हैं और देखे जा रहे हैं। क्या देखे जा रहे हैं? थोड़ी देर रुकते थे कि सुने देखें ये क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं जाता था। चुपके ही चुपके मुलाकात होती थी, नैन मुलाकात जिसको कहा जाता है। ये बाबा ने सिखा दिया कि आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। ये पहली प्रैक्टिस कराई, इससे बहुत परिवर्तन जीवन में आता है। जितने भी मनोविकार हैं उन सब पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है अगर इसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। कि जब किसी से मिलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, उससे पहले हम अलर्ट हो जाएं, अपने को चेक करें कि हम देह की स्थिति में हैं और जिसको देख रहे हैं देहधारी देह को देख रहे हैं, या आत्मिक स्थिति में हैं और देह में जो आत्मा है हम आत्मा को देख रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है, इससे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। इस पहली प्रैक्टिस में भी हम लोग अभी तक परफेक्ट नहीं हुए। ये हमारे पुरुषार्थ की बुनियाद है। तो बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जो बड़ी सिंपल हैं, सरल हैं, देखने में ऐसा लगता है खास कुछ नहीं है, लेकिन वो परिवर्तनकारी हैं। ज्ञान में आने से पहले भी हम सुनते थे कि कर्म से मनुष्य को फल मिलता है, सुख और दुख कर्म के आधार पर मिलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा पाओगे। As you do, so shall you get। तो जैसा कर्म की ये जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत भारत में मशहूर है। मैं पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया में 71 में गया तो वहां सिडनी में एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था। फिलॉसफी के स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर्स थे, तो जो डिपार्टमेंट का हेड था उसने जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया ऑडियंस को, तो उसने कहा कि लुक हियर, हियर माय फिलॉसफी, इट इज द लैंड फ्रॉम वेयर ही कम्स। ये व्यक्ति भारत से आया है, आपको मालूम है, आपने सुना है, भारत का एक विशेष जो सिद्धांत प्रसिद्ध है विश्व में, वो भारत ने विश्व को कर्म का सिद्धांत दिया है। ये व्यक्ति वहां से आया है। तो लोग ये समझते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत ये भारत की देन है विश्व के दर्शन को, फिलॉसफी को। लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया है कि बच्चे जो संकल्प है ये कर्म का भी बीज है, फल संकल्प से मिलता है। जैसा संकल्प करोगे वैसा कर्म होगा और जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। ये बात तो ठीक है कि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन कर्म भी कैसा होगा? जैसा आपका संकल्प होगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कर्म पर ध्यान दो, संकल्प पर ध्यान दो। जब तक संकल्प आपके ठीक नहीं होंगे, पहले कोशिश करते रहे कर्म ठीक करें। मन में हलचल, कंफ्यूजन, उलझन, कुछ प्रश्न जिनका समाधान नहीं, और कोशिश करते रहे कर्म को ठीक करने की। लेकिन कर्म भी ठीक तब होगा जब हमारे संकल्प ठीक होंगे। उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे पॉजिटिव थिंकिंग करो, संकल्पों का जो है लीकेज, वेस्टेज, ये बंद करो। बहुत शक्ति, बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट करते हो, ये बचाओ। आजकल कंजर्वेशन के लिए बहुत कोशिश होती है सब जगह, तो ये जो शक्ति है इसको प्रिजर्व करो, कंजर्व करो। आत्मा निर्बल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लोग खुद ही कहते हैं कि ये मन दौड़ता रहता है, चंचल है, काबू में आता नहीं है। तो अब ऐसा कहना ज्ञानवान के लिए शोभा देता नहीं है। बाबा ने हमको ज्ञानवान बनाया है, योगी बनाया है। योगी का अपने चित्त पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, उसकी मर्जी है, जो सोचना चाहे जब सोचना चाहे, जब ना सोचना चाहे, जिस बात और को जैसे सोचना चाहे, इसको माइंड कंट्रोल कहा जाता है, जो लोगों का नहीं है। और हमें ये बाबा ने विशेष वरदान दिया है, बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। बहुत दफा हम कहते हैं प्रभु हमें कोई वरदान दो, जिसका जो इष्ट है देवी देवता उसके सामने बैठकर कहते हैं हे देवी, हे देवता, मुझे वरदान दो। ये वरदान है मन पर कंट्रोल, ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ। जिसका मन पर पूरा कंट्रोल हो जाए, अगर वो बारिश हो रही है और वो कहे स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। जाती हुई रेलगाड़ी रुक जाए, रुकी हुई रेलगाड़ी चल पड़े। लेकिन हमारा योग ऐसा है, हम इन सिद्धियों की कोशिश नहीं करते, ना हमें ये चाहिए। बाबा ने कहा है ये सोने की जंजीरें हैं, ये भटक जाता है मनुष्य अपने रास्ते से। लेकिन शक्ति इतनी जरूर है। आपने देखा वो जो इसराइल का वो जो भाई है, जो यहाँ लंदन में आया था, जिसको आपने देखा प्रैक्टिकली, टीवी पर भी देखा, हम लोगों ने वीडियो पर देखा, तो वो जब कहता है बेंड, तो लोगों के पर्स में पड़ी हुई सुइयां बेंड हो जाती है। जब वो कहता है स्टॉप, चलती हुई घड़ियां रुक जाती है। और देखा ना आपने, ये कैसे सिद्धि हुई उसकी, मन की एकाग्रता से, मन पर कंट्रोल से। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, और ही लोगों की चाबियां टेढ़ी कर दी, उसका क्या फायदा हुआ बताइए। अच्छा, और चलती हुई घड़ियां रोक दी, अब उनको जाना पड़ेगा घड़ी साज के पास, भाई इसको ठीक कर, उसका क्या फायदा। बात तो यह है कि जो बिगड़ी हुई चीज है उसको बनाया जाए, बजाय इसके कि जो बनी हुई चीज है उसको बिगाड़ा जाए, उसका क्या फायदा हुआ। भगवान को तो कहते हैं भाई बिगड़ी को बनाने वाला है। तो ऐसी सिद्धि मन में आती है, जो हम सोचेंगे वो होगा। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके पास जाते हैं। अभी आपने दादी जानकी की स्टेज देखी होगी, कितना उनका ये शक्ति काफी आ गई है। जैसा वो सोचती हैं, ये बिल्डिंग मिल जाए, ये जगह मिल जाए, ये फलां सर्विस बढ़ जाए, सोचा और हो जाता है। ये उनको अपने लिए नहीं चाहिए, लोक सेवा के लिए चाहिए। सेवा के विस्तार होता जा रहा है, सबको संदेश कैसे मिले। लेकिन आप अनुभवी हैं प्रैक्टिकली कि जैसे वो सोचती हैं हो जाता है। लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि रची, मुसलमान लोग कहते हैं खुदा ने कहा कुन, कुन मना हो जा। क्रिश्चियंस के बाइबल में तो ये है, उसने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, वगैरह वगैरह। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान ने एक एक चीज के लिए कहा और एक एक चीज हुई, तो ये कोई बड़ी शक्ति नहीं है। वो एक ही दफा कह देना जिससे सब चीज हो जाए, एक चीज कही वही हुई, दूसरी नहीं हुई, तो क्या फायदा हुआ। किसी को कहा दूध ले आओ, वो दूध तो गिलास में ले आया, गर्म करके लाया नहीं। और समझना चाहिए उसको, ये दूध पीना चाहता है, गर्म दूध पीता है, तो गर्म करके लाना चाहिए ना। फिर उसको कहो जाओ गर्म करके आओ, गर्म करके आया, फिर चीनी तो उसमें मिला ही नहीं। उसको कहो अरे भाई चीनी मिला के आ, चीनी मिला आया, चीनी डाल के तो आया, हिला के आया। फिर उसको कहो चिमचा ले आओ भाई इसको हिला है। तो ये क्या बात है, ये तो खिटखिट हुई। खुदा ने कहा कुन और दुनिया हो गई, ऐसा वो कहते हैं। खुदा ने कहा, लेकिन खुद आ, जब खुद आता है वो परमात्मा, तो जो उसके बच्चे हैं उन बच्चों को क्या सिद्धि आती है, जो वो सोचे वो होगा, हुआ ही पड़ा है। उनको संकल्प ही वो आएगा जो होने वाला है, दूसरा संकल्प आएगा नहीं, क्योंकि उनको अपनी कोई इच्छा रही नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। वो सोचते हैं दुनिया के लिए, और भगवान पर फिदा है, भगवान उन पर फिदा है। जो वो सोच लेते हैं वो हो जाता है। जैसे वो तो कहते हैं बाल हठ ब्रह्म हठ वगैरह, कि जैसे बच्चा हट कर बैठता है, हठ करता है, मम्मी मैं आइसक्रीम खाऊंगा, नहीं बेटा आइसक्रीम नहीं खानी, तेरा गला ठीक पहले ही नहीं है, आइसक्रीम नहीं दूंगी, नहीं मैंने आइसक्रीम खानी है, नहीं खानी आइसक्रीम, मैं कहती हूँ फिर बाद में खिलाऊंगी, दो दिन शहर जा, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक तू आइसक्रीम नहीं देगी, हट करके बैठता है। तो फिर वो खिलाना पड़ता है उसको, चाहे थोड़ी खिलानी पड़े, मानता ही नहीं है, बाल हट है। वो तो बच्चे का हट होता है, हट नहीं है हमारे यहाँ, हम हट योगी नहीं है, सहज योगी हैं। तो हम तो सहज ही जो सोचते हैं बाबा के लिए, विश्व की सेवा के कल्याण के लिए, बाबा ये जगह मिल जाए ना तो ये भी सेवा हम कर लें। बाबा कहते जैसे हम ये सीखे हैं, हाँ बच्चे, बाबा के लिए कहते हैं हाँ बाबा, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे मिल जाएगी और बोलो। तो बाबा तो हमको इतने गिफ्ट देता है, इतने वरदान देता है, ये किस लिए? क्योंकि हमने जो संकल्प की शक्ति है, जो संकल्प रूपी बीज है, उसको पकड़ा है, मूल को। संकल्प रूपी बीज और निश्चय रूपी जल, क्योंकि बीज बो दिया आपने, वृक्ष तो होगा या क्यारी तो होगी, फल फूल तो निकलेंगे, लेकिन अगर आप उसको पानी नहीं देते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा, नतीजा क्या होगा? पानी भी जरूरी है, निश्चय रूपी जल। कोई अगर ये सोचे भगवान ये होगा कि नहीं होगा, वो सुना है ना आपने भाई, एक व्यक्ति डूब रहा था, डूबता है, और वो था हनुमान का पुजारी, हनुमान जी हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी हनुमान जी बचाओ, डूबता जा रहा है बेचारा, गले तक तो आ गया है, उससे ऊपर उठ रहा है, तो हनुमान जी तो आए नहीं। कहते हैं हनुमान जी मालूम होता है किसी और काम में बिजी हैं, है नहीं? तो अब वो तो जब तक आए, अब मैं तो डूब चलूं, डूब चला हूं, राम जी राम जी आओ, राम जी राम जी आओ। तो उसने सोचा राम जी को बुला लो, राम जी भी नहीं आया, फिर कृष्ण जी आओ। तो ये जो इस तरह का मन होता है वो निश्चयात्मक मन नहीं होता है। एक बल, एक भरोसा, एक निश्चयात्मक, ये निश्चय रूपी जल होगा कैसे नहीं? हम कोई अपने लिए कुछ कह रहे हैं क्या? कोई हमारी अपनी पर्सनल इच्छा है क्या? वो तो है ही नहीं। अपना जो कुछ है वो बाबा का है, फिर बाबा का जो कुछ है वो हमारा है, स्वाभाविक बात है। स्वयं बाबा ने ये फार्मूला बताया है कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ये होता है, जो जिस पर कुर्बान जाता है दूसरा भी उस पर कुर्बान जाता है। तो ये जब होगा तो कितना बड़ा हमारा प्राप्ति हो सकती है। तो संकल्प रूपी जल और संकल्प रूपी बीज और निश्चय रूपी जल, जब ये ठीक होंगे तो कर्म ठीक होंगे, कर्म ठीक होंगे तो फल उसका निश्चय रूप से ठीक मिलेगा। तो इतनी बातें हमारे जीवन में हुई हैं। संगम युग में ये ऐसा जीवन है, दिन में क्षण 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 में, पल पल में, इतनी नई बातें हमने सुनी हैं, देखी हैं, अनुभव की हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। किसी के मन में इस जीवन में पहले था कि हमें बाबा मिलेगा, भगवान मिलेगा, चल रहे थे, कोई अपने व्यापार में, कोई व्यवसाय में, कोई घर गृहस्थी में चल रहे थे, माया की दलदल में सब फंसे हुए थे, किसी को ये ख्याल नहीं था बाबा मिला, स्वयं भगवान मिला। सबसे बड़ी प्राप्ति दुनिया में ये है, जिसको सोचकर भी दिमाग आदमी का तर हो जाए। जैसे वो माजून खिलाते हैं भाई, पांच प्रकार के मगज, ये बीज तरबूज का, खरबूज का, वगैरह वगैरह, है जी, उसमें बादाम, इलायची, मिश्री, सब मिला मिलू के घोट के उसको, या उसका चीनी में बना के उसको माजून खिलाओ। ये सबसे बड़ी जो आत्मा में शक्ति आई, भगवान हमें मिल गया, और भगवान ने कितना हमें वरदान दिया आज तक, लेकिन हम उसकी बात को सुने, जीवन में लाएं, ये डिपेंड करता है। परिस्थितियां आती हैं, उससे फिर हम मूंज जाते हैं, फिर वो स्थिति नहीं रहती। और बाबा कहता है ये परिस्थितियां क्यों आती हैं? एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, इसलिए आती, ये तो कोई खास बात नहीं है। ये तो जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों के आधार से होता ही है, इसमें कोई बात नहीं। इस संगम युग में इसमें हर एक जीवन का नया इंटरप्रिटेशन है जो बाबा ने दिया है विशेष रूप से। ये जो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनसे कई दफा हम मूंज जाते हैं, समझते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, विघ्न पड़ गया, ये क्या मुश्किल आ गई, ये सोचना हम सोचते हैं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है ये परिस्थितियां आती हैं तुम्हारे परिवर्तन के लिए। हमेशा ये समझो ये परिस्थिति आई है मेरे में मन में कोई ना कोई कमी है, त्रुटि है, उसको ठीक करने के लिए ये हुआ है। जैसे कोई लोहे की चीज हो, किसी मेटल की चीज हो, उसको आप हाथ लगाते हैं, पूरी तरह से घिसी हुई नहीं है, प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, आप हाथ फेरते हैं तो आपको थोड़ा स्क्रैच जैसा लगता है, रफ डफ लगती है, तो आप फाइल लेकर, रेती लेकर उसको रगड़ते हैं, भाई ये ठीक हो जाए, उसका कोना, उसका जो उभरा हुआ कोई हिस्सा, स्मूदन करने के लिए उसको। ये परिस्थितियां उस लिए आती हैं, हमें असली जेवर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। हमारी जो रफनेस है, जो रफ कॉर्नर्स हैं, उनको समाप्त करने के लिए ये परिस्थितियां हैं। तो ना है, अगर नहीं आएंगे हमारी कमजोरियां रह जाएंगी, हमको पता कैसे लगेगा ये कमजोरियां ये रहे हुए हैं हमारे में। कोई छिलका है किसी को चुभ गया, कोई लकड़ी का कुछ बाहर निकला हुआ, कुछ एक छिलका जैसा अंगुली में चुभ गया, तो वो अंदर ही रहा, उसको क्या मालूम कैसे है। किसी व्यक्ति को शीशा चुभ गया तो डॉक्टर ने सब जगह से निकाल दिया, एक जगह मामूली सा बहुत बहुत बारीक सा टुकड़ा रह गया उसके माथे के पास। वो चलता रहा आगे, वो चलता रहा, जब चलता था तो बताते हैं भाई उसको बहुत गुस्सा आता था, इरिटेशन होती थी, बैठे बैठे अचानक से ना कोई परिस्थिति ना कुछ ना कुछ, और उसको बड़ा आता था, उद्वेग आता था। क्यों आता है, क्या बात है? सारी जब देखा तो देखा उसका कि भाई वो एक छोटा सा जो शीशे का टुकड़ा था, बहुत बहुत छोटा सा, वो रह गया था, वो चलता रहता। तो छोटी सी चीज भी अगर रह जाती है, वो अगर दुख देती है, पीड़ा आती है, तो समझना चाहिए ये साइन है कि अंदर रही हुई है कुछ खराबी, ये बाहर निकलना चाहती है, इसको निकालो बाहर। इलाज तो उसका यही है कि उसको बाहर निकालो, बजाय इसके कि वो उठे ही ना, उठे नहीं तो और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नतीजा क्या होगा। इसी तरीके से जो परिस्थितियां आती हैं, वो परिस्थितियां हमें परिवर्तित करने के लिए आती, और परिवर्तन ही पुरुषार्थ है, परिवर्तन ही पुरुषार्थ है। जो परिवर्तित होने का पुरुषार्थ नहीं करते वो पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं हम आगे कैसे बढ़ें, आगे कैसे बढ़ें, पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? अपने में परिवर्तन लाओ। किस बात का परिवर्तन लाएं? जो कमियां रही हुई हैं, कमजोरियां रही हुई हैं, उनको हटाने का हम पुरुषार्थ करें। तो ये जो परिस्थितियां आती हैं, ये उनको हमारे सामने लाती हैं कि ये आप में रहा हुआ है, इसको ठीक करो, तो वो तो अच्छा ही है ना। तो ये परिवर्तित हम होते रहें और यही पुरुषार्थ करते रहें, तो बाबा कहते हैं कि फिर आपकी उड़ती कला होगी। उड़ती कला वाला जो है उसको ये चीजें नहीं खास मालूम पड़ती। जो उड़ रहा हो ऊपर हवाई जहाज में, नीचे अगर काफी कोई रास्ता खराब भी है, पानी आया हुआ है काफी, उसको क्रॉस करना तो आम आदमी के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो वो विघ्न है, कठिनाई है। लेकिन जो उड़ रहा है उसके लिए क्या कठिनाई है, क्या विघ्न है? उड़ती कला वाले की निशानी यह है कि जो उसकी परिस्थितियां ऐसी विकराल आएंगी, वो उसको परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो तो उनसे ऊंचा उठ चुका, उसको उसका पिंच नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, वो उनसे ऊपर उठकर चलेगा। जो थर्ड ग्रेड का होगा, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था इस पढ़ाई में भी तीन डिवीजन है, तीन सर्टिफिकेट कौन से लेने हैं वो भी आपको याद होंगे, बाबा ने बताया कौन सी डिग्रीज लेनी है इस यूनिवर्सिटी से और उसके डिवीजन कौन से हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन को आमतौर से लोग रॉयल डिवीजन कहते हैं, पता नहीं क्यों, रॉयल वाले शायद थर्ड के होते होंगे मालूम नहीं। तो वो तीन तो हैं ही, पहले डिवीजन वाले वो हैं जिनको बाबा कहता है कि जो उड़ती कला के, दूसरे डिवीजन के वो हैं जो चढ़ती कला के, अभी उड़े नहीं, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं, स्थिति उनकी बेटर तो होती जा रही है लेकिन ऐसी नहीं हो रही कि जो उड़ने लगे। चलो ये फिर भी सेकंड क्लास है, अपर सेकंड समझ लो, सेकंड समझ लो, लोअर से अबव हैं। और तीसरे जो हैं, अरे कहेंगे फिर क्या हो गया भाई, फिर मुश्किल आ गई, काम कुछ करते हैं ये मुसीबत हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं। तो उनको ये हमेशा रहेगा झंझट है, ये दुनिया बड़ा ये है वो है, दुनिया जीवन तो वो भी काट देंगे, वो भी कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन ये रोते ही रहेंगे। किसी ने किसी से पूछा, अरे भाई तुम रोते क्यों हो, कहता है कौन कहता है, मैं रो नहीं रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो इन लोगों की शक्ल ही ऐसी है तो क्या करेंगे, फिर तो फिर मजबूर है बेचारा, फिर वो रो तो नहीं रहा। ऐसे ही कई लोगों की आदत ही ऐसी है, भाई तू क्यों रो रहा है, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरे नसीब ही ऐसे हैं, ऐसा है क्योंकि शुरू से बचपन से उन्होंने ऐसा किया है, उनके फेशियल कर्व्स ही ऐसे हो जाते हैं, माथे पर, नाक के पास, गालों पर सारे कर्व्स ऐसे हो जाते हैं जो देखने में आता है बेचारा बहुत दुखी है, चाहे वो कितना सुखी क्यों ना हो। तो ये भाई रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है। तो बाबा ने आके कहा है ये तीन डिवीजन हैं, आप तीन में से किस में आना चाहते हो, सब कहेंगे उड़ती कला में जाना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य तो रखते हो बहुत ऊंचा, और लक्षण अच्छा है, ये लक्ष्य ऊंचा रखना, ये उत्साह उमंग लाइफ की ये एक निशानी है, वही व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है, उड़ती कला में जा सकता है जिसका लक्ष्य ऊंचा हो। लक्ष्य तो होना ही चाहिए, पहले तो लक्ष्य नहीं था, मिला और ऊंचा लक्ष्य, लेकिन केवल ऊंचा लक्ष्य रख लेना और लक्षण कुछ न धारण करना वो तो नहीं होगा, वो तो डे ड्रीमिंग हो गया। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम वो लक्षण धारण करें, जब वैसे लक्षण धारण करेंगे, लक्ष्य भी ऊंचा रखेंगे और इन परिस्थितियों को अपने पुरुषार्थ के लिए साधन मानेंगे और उसमें संकल्पों को हम बीज और जो दृढ़ निश्चय है उसको संकल्प समझेंगे और स्वयं को बड़ा खुशकिस्मत समझ करके भगवान हमें मिल गए ऐसा मानकर जीवन में सदा खुश रहेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। बाकी आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि आमतौर से हमारे यहाँ योग की भट्टी की बात होती है, भट्टी करनी है। मैं समझता हूँ कि भट्टियाँ हमारी चार किस्म की होती हैं, चार नहीं तो तीन किस्म की तो होती ही है। एक तो ज्ञान की भट्टी होती है जिसमें अज्ञान का कोई संकल्प ना आए, ज्ञान के संकल्प आए और ज्ञान की गहराई में हम उतरते जाएं, ज्ञान की हर एक बात का अनुभव करते जाएं। ड्रामा है, एक ड्रामा का पॉइंट भी समझने में व्यक्ति साइलेंस में रह के भट्टी में बैठ के उस बात पर विचार करे, उसकी गहराई में जाए इत्यादि, इस प्रकार से ज्ञान की भट्टी है। योग की भट्टी तो आपके अनुभवी हैं, मधुबन में जाते हैं, यहां करते हैं। इसी तरह से देवी गुणों की भट्टी है कि आप ये सोच लें कि एक हफ्ता मैं जो भी ये देवी गुण हैं उनको धारण करूंगा, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे व्यापार से व्यवसाय से छुट्टी करनी पड़े, जैसे एक बीमार व्यक्ति बेड में होता है ऐसे ही मुझे बाहर भी ना जाकर घर में अपने कमरे में ही रहना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन इस एक हफ्ता मैंने अपने मन में कोई भी अशुद्ध संकल्प नहीं आने देना है, ये मेरा बिल्कुल पक्का संकल्प है। पॉजिटिव ही सोचना है, किसी की बुराई को सोचना नहीं, हर एक के लिए भला सोचना है। सबसे मेरी मित्रता है, सबसे मेरा स्नेह है, ये गुणों का संकल्प, गुणों की भट्टी है। तो ये इस तरह की भट्टी की जरूरत होती है, सब तरह की। और हम समझते हैं कि ये जो लंदन है, ये लंदन में सब भट्टी एक साथ चलती है। जहां दादी जानकी बैठी हैं, साक्षात गुणों की भी मूर्त हैं, योग के भी अभ्यास में कितना महान है और ज्ञान की गहराई में भी कितने हैं, तो उनके अंग संग उनके साथ रहते हुए जो ये आपको मौका मिलता है, हम लोग भी मौका लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं। बाबा कोई ना कोई निमित्त कारण बना देता है तो ये भट्टियां कर जाते हैं। तो हम आए हैं इस ख्याल से कि भाई हम थोड़ा सा भट्टी करके आए, ठीक है ना। ओम शांति।